7. सूफी मत का क्रमिक विकास। अध्ययन की सुविधा को दृष्टि में रखकर सूफी मत के विकास की 4 अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। 1. प्रारंभिक अवस्था, जिसमें फकीरी जीवन बिताने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से क्रियाशील थी। 2. रहस्यवादी प्रवृत्ति का उदय तथा उसका उत्तरोत्तर विकास, सैद्धांतिक और दार्शनिक चिंता की प्रधानता। 3. सूफी संप्रदायों का संगठित होना तथा जीवन के नाना क्षेत्रों में सूफी मत का प्रभाव दिख पड़ना। और 4. ह्रासावस्था। प्रथम और द्वितीय अध्याय में हम कुछ विस्तार के साथ यह कह आए हैं कि प्रारंभ में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में संन्यास और रहस्यवादी जीवन के प्रति कैसे मनोभाव थे और साधकों की जीवनचर्या कैसी थी। हम यह देख चुके हैं कि उस काल ईसा की 7वीं शताब्दी के साधक सांसारिक विषयों से अपने को अलग रखते थे। वे गरीबी से अपना समय काटते थे और बड़े ही विनम्र थे। वे परमात्मा से भय खाते थे। इस्लाम धर्म में अल्लाह का जो स्वरूप है, उससे उनका भय खाना स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि उस काल के साधकों में परमात्मा की दयालुता, प्रेम आदि गुणों के प्रति दृष्टि नहीं जाती। परमात्मा के दंड का भय उनमें इतनी मात्रा में बढ़ गया था कि मोहम्मद साहब के साथ रहने वालों में एक अबू दर्दा ली ही और पृष्ठ 225 कहा करते थे कि अगर मनुष्य को यह मालूम हो जाए कि आने वाले जीवन में उस पर क्या बीतने वाला है, तो वह खाना पीना छोड़ दे। कहा जाता है उस्मान बिन अमजून ने एक बार मोहम्मद साहब से कहा कि उनका हृदय उन्हें साधना में लगने को प्रेरित कर रहा है। उनकी इच्छा है कि वे पहाड़ों में चले जाएं और संन्यास जीवन बिताएं और अपना धन, स्त्री सब कुछ छोड़कर संसार में एक जगह से दूसरी जगह पृष्ठ संख्या 198 घूमते फिरते रहें तथा मांस और सुगंधित द्रव्यों का सेवन छोड़ दें। सू सेंट श्रा पृष्ठ 10। इससे पता चलता है कि उस काल में लोग किस प्रकार से संन्यास जीवन बिताना चाहते थे। वैसे एक हदीस में यह कहा गया है कि इस्लाम में संन्यास के लिए स्थान नहीं, लेकिन मासियों ने इस हदीस की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट करते हुए बतलाया है कि बाद में सूफियों का विरोध करने के लिए इस हदीस का आविष्कार कर लिया गया था। उन्होंने इस हदीस को हिजरी सन की 3री शताब्दी का माना है। इंसा ई खंड 8 पृष्ठ 682। चाहे जो हो, इतना अवश्य पता चलता है कि उस काल में ऐसे लोग थे जो संसार त्यागी थे और परमात्मा के लिए सब कुछ का त्याग किए हुए थे, और उनके लिए पैगंबर के साथियों में भी सम्मान का भाव था। इब्न खल्दून सू सेंट श्रा पृष्ठ 809। संन्यास की इस प्रवृत्ति को तत्कालीन राजनीतिक और धार्मिक अवस्था से पूरा प्रोत्साहन मिला। उस काल में अधार्मिकता का राज्य था, शासन व्यवस्था और श्रृंखल थी और शासकों में अत्याचार प्रियता का बोलबाला था। खून खराबी और गृह कला जोरों में चल रहे थे। यह उमैया खलीफों का काल था। कहा जाता है कि संन्यास की लहर जो समस्त मुस्लिम देशों में फैल गई, उसके 2 केंद्र बसरा और कूफा थे। विशेष रूप से खुरासान इससे अधिक प्रभावित था। ईसा की 8वीं शताब्दी में खुरासान राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों का मुख्य केंद्र बन गया। उमैया खलीफों को हराकर अब्बासी खलीफों के हाथ में जो सत्ता आई, उस षड्यंत्र का सूत्रपात खुरासान में ही हुआ। बल्ख के राजकुमार इब्राहिम बिन अधम यहीं के थे। बल्ख के शकीक इब्राहिम के ही शिष्य थे। शकीक की मृत्यु सन 810 ईस्वी में हुई। उस काल के प्रमुख साधकों में कई नाम लिए जाते हैं जिन्हें सूफी साधक अपनी परंपरा में मानते हैं। उनके नाम यों हैं: इब्राहिम बिन अधम सन 777 ईस्वी के लगभग पृष्ठ संख्या 199, दाऊद अत्ताई सन 781 ईस्वी से 782 ईस्वी, फुजैल बिन इयाज सन 803 ईस्वी के लगभग, राबिया अल अदाविया जिसकी मृत्यु सन 802 ईस्वी में हुई। उस काल में साधक व्यक्तिगत रूप से अपनी साधना में लगे रहते थे और उनका कोई संगठित संप्रदाय नहीं था। यह बात जरूर थी कि इस प्रकार के साधक प्रायः मिला जुला करते थे तथा कुरान का अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते थे, लेकिन समान दृष्टिकोण वाले साधकों के भी छोटे छोटे दल धीरे धीरे बनने शुरू हो गए थे। इस समय के साधकों में 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिख पड़ती हैं। एक तो वे लोग थे जिनका केंद्र बसरा था और जो बाह्याचार पर जोर न देकर इसे अंतर की वस्तु मानते थे। दूसरे सीरिया वाले थे जिनका झुकाव बाह्याचार की ओर ही अधिक था। लुई मासियों ने इन दोनों स्थानों के साधकों तथा प्रकृति की चर्चा की है और मुख्य मुख्य साधकों के नाम बतलाए हैं। बसरा वालों की चर्चा करते हुए मासियों ने बतलाया, इंसा ई खंड 8 पृष्ठ 682 है कि उनकी दृष्टि आलोचनात्मक थी। वे तर्क संगत सिद्धांतों को मानने के पक्ष में थे। बसरा के साथ जिन साधकों का नाम लिया जाता है उनमें कुछ के नाम यूं हैं, हसन बसरी सन 728 ईस्वी, मालिक बिन दिनार, फजल रक्काशी, रबाह बिन अमर कैसी, सालिह मर्री तथा अब्दुल वाहिद बिन जैद सन 793 ईस्वी। कूफा वाले आदर्शवादी और सनातन पंथी थे। यहाँ के साधकों में प्रमुख थे रबी बिन खैथम 686 ईस्वी, अबू इसराइल मुलै सन 757 ईस्वी, जाबिर बिन हयान, कुलैब सैदावी, मंसूर बिन अमर, अबुल अताहिया तथा अब्दक। मासियों के अनुसार इनमें पिछले तीन इस्लामी साम्राज्य की राजधानी बगदाद में चले आए। सन 864 ईस्वी के बाद से बगदाद इस्लामी रहस्यवादियों का केंद्र बन गया। हसन बसरी को सूफी अपने संप्रदाय का मानते हैं। यद्यपि हसन के जीवन में संन्यास की ही प्रधानता रही है, फिर भी उसमें आध्यात्मिकता पृष्ठ संख्या 200 तथा रहस्यवादी भाव भी हैं। उसका कहना था कि विनम्रता और दीनता साधना के ही वास्तविक उपकरण हैं। वेशभूषा और भोजन तो गौण हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी में सूफी साधक परंपरागत धर्म की पाबंदी और उसके नियम कानूनों को मानकर ही चलते थे। उस समय सूफी मत नकारात्मक ही विशेष था। उसके सिद्धांतों का उस समय तक समुचित विकास नहीं हो पाया था। रिजा शब्द का प्रयोग उनके उस समय की अवस्था को सूचित करने के लिए उपयुक्त है। रिजा का अर्थ जो कुछ मिले उसी से संतोष कर एकांतिक जीवन बिताना है। इस समय तक वे न साधना के मानसिक पक्ष की ओर ही अधिक अग्रसर हो पाए थे और न पूरा पूरा फकीरों जैसा जीवन बिताने तक ही सीमित थे। पैगंबर के कुछ विशेष वचनों और उपदेशों को वे अत्यधिक महत्व देते थे और उन्हें छोड़कर दूसरों की ओर ध्यान नहीं देते थे। धर्म के सूक्ष्म तत्व विवेचन की ओर अधिक ध्यान न देकर धर्म के व्यवहारिक रूप पर ही विशेष जोर दे रहे थे। वैसे धीरे धीरे तत्व चिंतन की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया उनमें क्रियाशील थी और वे धर्म के बाह्य विधान से क्रमशः दूर हटते जाते थे। फिर भी अभी वे उस जगह नहीं पहुंचे थे जबकि खुल्लम खुल्ला उन्होंने बायाचारों को आडंबर कहना शुरू कर दिया था और साधना को सिर्फ अंतर की वस्तु मानना प्रारंभ कर दिया था। यह तत्व चिंतन की प्रवृत्ति भीतर ही भीतर काम कर रही थी, लेकिन प्रकाश में यह अब्बासी खलीफों के शासन के प्रारंभ होने के लगभग 100 वर्ष बाद आई। वैसे उनके पहले के उमैया खलीफों के काल से ही यत्र तत्र इसकी एक झांकी मिल जाती है। ईसा की 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूफी साधना का मानसिक पक्ष प्रबल होता गया और सूफी साधकों ने परम सत्ता की सर्वव्यापकता तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परम सत्ता के दर्शन करने के सिद्धांत को अधिक से अधिक अपनाया। संन्यास अपने आप में एक नीरस वस्तु तथा नकारात्मक है, लेकिन जब इसमें आध्यात्मिक भावनाएं क्रियाशील हो जाती हैं तब इसका रूप पृष्ठ संख्या 201 बदल जाता है। सभी कष्ट उस समय आनंद में बदल जाते हैं। हृदय और मस्तिष्क को उस समय सुंदर संयोग देखने को मिलता है। तत्व चिंतन की ओर दृष्टि जाती है। बगदाद में संन्यास का यह परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। बगदाद उस काल में एक जबरदस्त सांस्कृतिक केंद्र था। अब्बासी खलीफों के दरबार में विद्वानों और अन्य सुधीजनों का पूरा सम्मान था। बाहर के विद्वान वहां आते थे और ईसाइयों बौद्धों और मुसलमानों के बीच शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। इसका प्रभाव सूफी साधकों पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था। परम सत्ता के साथ एकत्व बोध सूफी साधना के क्रमिक विकास के फलस्वरूप घटित हुआ। खलीफा हारून और रशीद के समय से लेकर खलीफा मुतवक्किल तक का काल अर्थात ईसा की 8वीं शताब्दी के पिछले 10-15 वर्षों से लेकर 9वीं शताब्दी के लगभग 60 वर्षों तक 75 वर्षों का काल सूफी मत के विकास की एक नई दिशा की सूचना देता है। विशेष रूप से खलीफा मामून के समय से सूफियों में दार्शनिक तत्वों के विवेचन की प्रवृत्ति अधिक से अधिक दिख पड़ती है। उस काल के प्रमुख सूफी साधकों में यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो उठती है। उन साधकों में मारूफ अल करखी, अबू सुलेमान अद्दारानी, जुनून नून अल मिस्त्री, बायजीद अल बिस्तामी, मंसूर अल हल्लाज आदि के नाम सूफी मत के विशिष्ट प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके पहले के साधक फकीरों सा सादा जीवन बिताते थे और उस प्रकार के जीवन को वे ईश्वरीय विधान के अनुरूप समझते थे। उनका कहना था कि साधक के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द को परमात्मा की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। आलोच्य काल के सूफी साधकों में, जिनमें कुछ के नामों का उल्लेख हम अभी कर चुके हैं, फकीरी जीवन बिताने की प्रवृत्ति तो पाई ही जाती है, साथ साथ अन्य प्रवृत्तियां भी दिख पड़ती हैं। इन साधकों ने परम सत्ता को प्रियतम के रूप में देखा। उसके लिए उनके हृदय में प्रेम की व्याकुलता थी। उसका प्रेम पाना ही उनका अभीष्ट था। उसका प्रेम पाने की विवलता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। पृष्ठ संख्या 202। उनके लिए धार्मिक आचार व्यवहार का कोई मतलब नहीं था अगर वह उसके पाने में मददगार न हो। केवल बाह्याचार के अंधभाव से पालन करने का उनके लिए कोई भी अर्थ नहीं था। उनके लिए संपूर्ण धार्मिक कृत्यों का उद्देश्य उस प्रियतम का प्रेम पाना हो गया। प्रेमातिरेक से ये साधक बेसुध हो जाया करते थे। इस प्रकार की आत्मविस्मृति की अवस्था ध्यान, स्मरण आदि के द्वारा बहुत अभ्यास के बाद ही संभव है। उनके अनुसार ध्यान, स्मरण तथा अन्य क्रियाओं द्वारा अपने अहम को भुला कर ही परम सत्ता के साथ जो व्यवधान है उसे दूर किया जा सकता है। यह बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है, अतएव यह कोई आश्चर्य नहीं कि सभी साधकों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। इन साधकों का यह विश्वास था कि यह अवस्था भगवत कृपा से ही संभव हो सकती है और यह मनुष्य के वश की बात नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफी साधना का विश्वास उत्तरोत्तर ईश्वरीय प्रेम भक्ति तक पहुँच गया था और क्रमशः परमात्मा तथा उसके निर्मित सृष्टि के बीच का व्यवधान धीरे धीरे हटता गया। पहले जहाँ इन साधकों का आदर्श एकांतिक जीवन फकीरी, दीनता और विनम्रता था, वहाँ अब परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। तौहीद एकेश्वरवाद का अर्थ उनके लिए अद्वैतवाद जैसा हो गया। इस प्रकार का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ब्राउन ली हीप पृष्ठ 427-428 का कहना है कि परमात्मा को केवल प्रिय पात्र मानना तथा केवल उसी को ध्यान का विषय मानना, मनुष्य को उसी के द्वारा वालित यंत्र मानना तथा केवल आध्यात्मिक जीवन को ही जन्म महत्व देना, इस प्रकार के दृष्टिकोण में और एकमात्र परमात्मा को ही सत्य मानने एवं इस दृश्यमान जगत को असार समझने में बहुत कम का अंतर है और एक से दूसरे तक पहुंचने में कोई बड़ी खाई नहीं है। पहले जो परमात्मा मनुष्य की पहुंच के बहुत बाहर की चीज था, अब वह अलहक से प्रकट होने लगा। इस काल के साधक प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परम सत्ता के दर्शन पाने लगे। पृष्ठ संख्या 203 तथा अपने अहम को खोकर बेखुदी की हालत में परम प्रियतम का साक्षात्कार करने लगे। सूफी मत में जिस प्रकार की उदारता है और जिस प्रेम और भाव विवलता का समावेश इसमें है, उसे इस्लाम के कट्टर अनुयायियों से इसका विरोध होना निश्चित सा था। उन लोगों ने सूफियों के आचार, साधना पद्धति, सिद्धांत आदि सभी का विरोध किया है। पहले इन सूफी साधकों को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि कभी चलकर इस्लाम धर्म के शासकों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ेगा। वास्तव में उनका सादा फकीरी जीवन, एकांत में परमात्मा का ध्यान और स्मरण एक प्रकार से सामाजिक कुरीतियों के प्रति उनके अंतर के विद्रोह का प्रतीक था। वे शासकों के अत्याचार को देखकर भी उनका विरोध करना उचित नहीं मानते थे। उनके लिए कष्ट साधन आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक था। अपने ही भीतर के कलुष का परिमार्जन करने के लिए प्रधान चिंता का विषय था। उनका इसमें पूर्ण विश्वास था कि अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उनका इस प्रकार का आचरण उनके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि शासक धर्म की राह से चाहे जितना भी अलग हट जाए तो उसका विरोध भी किया जाना चाहिए। अतएव शासक की ओर से उनका विरोध वैसा नहीं दिख पड़ता, लेकिन मुल्लाओं और धर्म के व्याख्याताओं ने उन्हें सहज में ही नहीं छोड़ा। सूफियों के प्रेम और बेखुदी के सिद्धांत इस्लाम के धर्मानुयायियों को खटकने वाले थे। सूफी इस्लाम के बायाचारों को उतना महत्व नहीं देते थे और उनकी व्याख्या अपने ढंग से करते थे। केवल बायाचार का यंत्रवत पालन सूफियों की दृष्टि में बेकार था। वे अंतर की शुद्धि तथा हृदय से धर्म के नियमों को समझना और उनका पालन करना ही असली धर्म का पालन करना मानते थे। इसका फल यह हुआ कि बहुत से सूफी साधकों को प्राण गंवा देने पड़े थे और कितनों को निर्वासित होना पड़ा था। इस विरोध का रूप साहित्य में पृष्ठ संख्या 204 भी प्रकट हुआ। कुछ तुर्की और फारसी कविताओं में सूफी शब्द का व्यवहार धर्म का ढोंग करने वाले, चरित्रहीन, मनमानी राह पर चलने वाले आदि किया गया है। सूफियों का विरोध करने वाले मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों में सर्वप्रथम खारिजी थे और उनके बाद इमामी। इमामियों के मतानुसार सूफी मुसलमानों में एक ऐसे सिद्धांत का प्रचार करते थे जो उनकी तकिया परंपरा के विरुद्ध था। उनका यह भी आक्षेप था कि सूफी 12 इमामों पर ईमान लाने के बदले रिजा, भगवत कृपा प्राप्त करने की बात कहते हैं। सुन्नियों का विरोध इतना उग्र नहीं रहा। इनके दो दल अपने अपने ढंग से इसका विरोध करते रहे। विरोध करने में वे एक नहीं रहे। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाले सूफी मत को सुन्नियों ने कभी भी इस्लाम धर्म का परिपंथी नहीं माना। सुन्नियों में जो कट्टर दल हशविया था, उसने विरोध का अपना ढंग अख्तियार किया। मुतजिलों और जाहिरियों का विरोध दूसरे किस्म का था। इब्न हनबल का कहना था कि सूफी बाह्य उपासना, नमाज आदि के बदले ध्यान और बेखुदी को तरजीह देते हैं, जो इस्लाम के विरुद्ध है। उसका यह भी कहना था कि सूफी इस्लाम धर्म के विरुद्ध आत्मा और परमात्मा के बीच जिस संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, वह मानो दो सांसारिक प्राणियों की मित्रता जैसी है। सनातन पंथ इस्लाम के अनुसार आत्मा अपने किए हुए पाप और पुण्य के साथ कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाता है और अल्लाह उसका इंसाफ करता है। सूफी जिसे इश्क कहते हैं, वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध पड़ता है। मुतजिलों और जाहिरियों का कहना है कि सूफी जिसे इश्क कहते हैं, उसका मतलब यह होता है कि हम इस सिद्धांत को माने कि परम सत्ता प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, जबकि परमात्मा की अपनी अलग सत्ता है और प्रकृति की अन्य वस्तुओं की अलग। इसी प्रकार से उनके अन्य सिद्धांतों से वे अपना मतभेद प्रकट करते हैं। इस काल के सूफियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और सिद्धांतों को प्रकट करने के लिए पृष्ठ संख्या 205 बहुत से ऐसे शब्द लिए हैं जिनका व्यवहार उस काल के धर्म संबंधी तत्वों को प्रकट करने के लिए किया जाता था, जैसे मारिफ, फना, तवक्कुल आदि। लेकिन इन शब्दों की व्याख्या को उन्होंने बराबर अस्पष्ट ही रखा। इस्लाम धर्म से इस प्रकार का जो स्पष्ट विरोध दिख पड़ता है, उसे दूर करने की चेष्टा सूफियों ने की है। इस्लाम के साथ सूफी मत का सामंजस्य बैठाने के लिए उन्होंने कुरान शरीफ की व्याख्या रूपकों की भाषा में की है। कुरान शरीफ की व्याख्या कई प्रकार से करना संभव है। सूफियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं की और इस तरह से उनके भी अलग अलग मत और संप्रदाय बन गए। सनातन पंथी इस्लाम के साथ सूफी मत के विरोध को दूर करने तथा इन दोनों में सामंजस्य बैठाने का सबसे अधिक श्रेय गजाली को है। सनातन पंथियों के बीच सूफी मत के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव गजाली के ही कारण आया। गजाली के कारण ही सनातन पंथियों ने इसको स्वीकार किया। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि प्रारंभ में व्यक्तिक रूप से साधना में रत लोग पाए जाते थे, लेकिन कालक्रम से सूफी साधकों में कुछ लोगों ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई, जिससे आकर्षित होकर कुछ लोग उनके पास इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे प्रमुख सूफी साधकों के साथ शिष्यों का दल रहने लगा और उनके संप्रदाय गठित होने लगे। इस प्रकार से विभिन्न साधकों और संतों की अपने अपने शिष्य परंपरा चल निकली। शिष्यों को अपने गुरु से उपासना आदि की विधि सीखनी पड़ती थी। उस समय यह बात पूर्ण रूप से मान ली गई कि बिना मुर्शीद गुरु के आध्यात्मिक जीवन के रहस्य नहीं मालूम हो सकते। सूफियों के भिन्न भिन्न संप्रदायों में सिद्धांतों को लेकर छोटे मोटे विभेद भी हैं। पहरावा, ध्यान तथा पाठ की विधियों में उनमें फर्क है, लेकिन ये गौण ही हैं। आधारभूत मुख्य सिद्धांतों में उनमें आपस में कोई भेद नहीं है। मुर्शिद गुरु का स्थान उन सभी में एक सा है। सूफियों के छोटे मोटे संप्रदायों को अगर छोड़ दें तो उन्हें हम दो मुख्य संप्रदायों में, श्रेणियों में, पृष्ठ संख्या 206 बांट सकते हैं। 1. इल्हामिया, 2. इत्तिहादिया। इल्हामिया वे हैं जो यह मानते हैं कि वे उन भाग्यशालियों में हैं जो भगवत प्रेरित हैं, और इत्तिहादिया अल्लाह के साथ एकत्व का दावा करते हैं। वैसे सूफी लोग पक्का मुसलमान होने का दावा करते हैं और अपने को हजरत मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। अली इब्न अबू तालिब को, जो मोहम्मद साहब के पोष्य पुत्र एवं दामाद थे, सूफी लोग सूफी मत का प्रतिष्ठाता मानते हैं। इस काल में सूफी साधक और संत वैसे नहीं रह गए जैसा कि प्रारंभ में उनका रूप देखने को मिलता है। अब वे एकांत सेवन करने वाले साधक नहीं रह गए थे और बाहर के लोगों से उनका संपर्क अधिक बढ़ने लगा था। इस काल में सूफी सिद्धांतों का परिचय देने वाले तथा सूफी मत का विवेचन करने वाले कई ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में सबसे पुराने अबू नसर अल सर्राज लिखित किताबुल लुमा तथा अबू तालिब अल मक्की लिखित कुतुल कुलूब हैं। सर्राज का समय सन 988 ईस्वी के लगभग है और मक्की का सन 996 ईस्वी के लगभग। इस काल में यूनानी दर्शन का एक प्रकार से इस्लामी दुनिया पर आधिपत्य हो जाता है। अरबी में दर्शन शास्त्र के बहुत से ग्रंथ अनुदित हुए। सूफी मत की विवेचना के लिए अब उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होने लगा। आत्मा और परमात्मा के संबंध आदि को लेकर गंभीर चिंतन होने लगा। इस काल ईसवी सन की 10वीं शताब्दी के अंत तक में सूफी मत एक सुनिश्चित धारा बन गई थी। जीवन दर्शन की दृष्टि से अथवा विचारधारा की दृष्टि से उसकी एक सुस्पष्ट परिभाषा और रूपरेखा तैयार हो गई थी। ईसा की 10वीं शताब्दी में प्रमुख सूफी साधकों का इस बात पर जोर रहा कि सनातन पंथी इस्लाम के साथ सामंजस्य बनाए रखना उचित है। सहव बिन अब्दुल्ला अल तस्तरी ने, जिनका समय सन 896 ईस्वी के लगभग है, 6 बातों पर जोर दिया है। ली ही अ पृष्ठ 392 पर उद्धृत। कुरान में पूर्ण आस्था, हजरत पृष्ठ संख्या 207, मोहम्मद के जीवन के आदर्श को सामने रखना, धर्म सम्मत भोजन को ग्रहण करना, हराम वस्तुओं का त्याग, दूसरों द्वारा कष्ट पहुंचाए जाने पर भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना, नियम का निष्ठापूर्वक अविलंब पालन करना, सनातन पंथी इस्लाम को ये सभी बातें अपने अनुकूल पड़ती हैं। सूफी यद्यपि इन सभी बातों का पालन करते थे, फिर भी सनातन पंथी इस्लाम से आधारभूत सिद्धांतों को लेकर उनका मतभेद था। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार परमात्मा का जो रूप समझा जाता है, उससे अलग ही सूफियों ने माना। सूफियों का अलहक सनातन पंथी इस्लाम के परमात्मा से अलग है। सूफियों का परमात्मा एकमात्र परम सत्य है। वह सनातन पंथियों के परमात्मा जैसा दंड देने वाला अथवा दया करके आने वाले जन्म में स्वर्ग के सुखों को देने वाला परमात्मा नहीं है। चाहे जो हो, उस काल के सूफी साधक इस बात के लिए सचेष्ट थे कि वे शरीयत का भी पालन करें और अपने हकीकत के सिद्धांत के साथ उसका मेल बैठाएं। सब समय सूफियों ने सूफी मत के उच्च आदर्शों के साथ अपने जीवनचर्या का मेल बनाए रखा हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी कितने प्रकार के लोग हुए जो मनमानी करने वाले थे और दुर्गुणों से भरे हुए थे। सन 1045 ईस्वी में कुशहरी का सुप्रसिद्ध रिसाल फी इल्म अल तसव्वुफ प्रकाश में आया। उसमें पिछले कई विचारकों और साधकों के विचार कुशहरी ने उद्धृत किए। अल सर्राज और अल सुलमी के विचारों के उद्धरण भी रिसाल में पाए जाते हैं। सूफी सिद्धांतों की रहस्यवादी धारा को उसने एक स्पष्ट रूप दिया था। रिसाल में इस बात को दिखाने की चेष्टा की गई है कि सूफी मत और सनातन पंथी इस्लाम में विरोध नहीं है। कुशहरी ने उसमें अपने समकालीन सूफी साधकों को स्मरण दिलाया है कि किस प्रकार वे सूफी साधकों के उच्च आदर्श से नीचे गिर गए हैं। जहां उन पुराने सूफी साधकों का जीवन दूसरों को प्रेरणा देता था और लोगों के लिए आदर्श स्वरूप था, वहां उसके समय के सूफी उन आदर्शों को जैसे भूल गए हैं। इस प्रकार से एक ऐसी स्थिति का हमें परिचय मिलता है कि यद्यपि सूफियों में बुराइयां आ गई थीं, फिर भी पृष्ठ संख्या 208, सूफी साधक उनके प्रति उदासीन नहीं थे और अपने जीवन में पुनः आदर्श की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। कहा जाता है कि रिसाल के प्रकाशित होने के 50 वर्षों के बाद गजाली ने बगदाद के निजामिया कॉलेज के अध्यापक पद से इस्तीफा दे दिया और सब कुछ छोड़कर सूफी हो गया। संभवतः ईसा की 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गजाली के प्रयास से सूफी मत को एक क्रमबद्ध दार्शनिक प्रणाली का रूप मिला। ईसा की 12वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न दरवेशों के संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। ये दरवेश कम या बेशी सूफी ही थे, लेकिन उनमें अब सभी सचमुच में सूफी ही हों, ऐसी बात नहीं है। उनमें ऐसे भी बहुत थे जो ढोंगी थे और भावाविष्टावस्था प्रेमातिरेक की बातें बिना किसी आधार के बिना समझे बूझे किया करते थे। इस समय तक आते आते सनातन पंथी इस्लाम स्वयं इन सूफी संप्रदायों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। औलिया और उनके चमत्कार, संतों की समाधि का दर्शन आदि सनातन पंथी कट्टर मुसलमानों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। वैसे उसके विरोधी भी कुछ लोग थे। दरवेशों के अदवी संप्रदाय के संस्थापक अल हकारी थे और इसकी स्थापना सन 1163 ईस्वी में हुई। अब्दुल कादिर अल जीली ने सन 1163 ईस्वी में कादिरी संप्रदाय की स्थापना की। रिफाई संप्रदाय के संस्थापक सईद अहमद रिफाई की मृत्यु सन 1982 ईस्वी में हुई। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने मृत्यु काल सन 1205 ईस्वी सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। इसी प्रकार से कुबरावी, शाजिली और मौलवी आदि संप्रदाय संगठित हुए। मौलवी संप्रदाय की स्थापना करने वाले जलालुद्दीन रूमी थे, जो सुप्रसिद्ध सूफी और फारसी के कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1273 ईस्वी में हुई। इसके बाद अनेकों दरवेशों के संप्रदाय बने। ईसा की 13वीं शताब्दी के बाद से सूफी मत का विकास दर्शन शास्त्र तथा साहित्य की दृष्टि से उसके विकास की पिछली शताब्दियों को बहुत पीछे पृष्ठ संख्या 209 छोड़ जाता है। इसके विकास का अंतिम युग इसी शताब्दी से प्रारंभ होता है और इस काल को सूफी मत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इब्नुल अरबी की मृत्यु सन 1240 ईस्वी में हुई। उसका वहदतुल वजूद का सिद्धांत सूफी मत तथा इस्लामी दर्शन में एक महत्व का स्थान रखता है। इब्नुल अरबी एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है और सूफी मत के विकास में उसका एक महत्व का स्थान है। उसके सिद्धांत अद्वैतवादी हैं। वास्तव में वह बहुदेववादी नहीं था, फिर भी उसकी कटु आलोचना हुई है, लेकिन आगे की विचारधारा पर उसका प्रभाव बराबर पड़ता रहा है। इसके बाद ही जीली ने इसी सिद्धांत को आधार मानकर उसमें कुछ परिवर्तन किए। जीली का सिद्धांत आज तक इस्लाम धर्म के रहस्यवादियों द्वारा मान्य है। इस काल का फारसी साहित्य सूफियों के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित है। अरबी साहित्य में तो कम, लेकिन फारसी साहित्य में बड़े बड़े सूफी कवि हुए। परमात्मा संबंधी प्रेम, भावाविष्टावस्था आदि के बदले कवियों ने प्रतीकात्मक शैली का सहारा लेकर शराब, साकी आदि का प्रयोग किया, जबकि शराब सनातन पंथी इस्लाम की दृष्टि में हराम है। इस तरह के सूफी कवियों में अरबी में उमर इब्नुल फरीद सन 1181 ईस्वी से सन 1235 ईस्वी का नाम आता है। शुस्तरी भी इसी तरह के कवियों में है जिसने अरबी भाषा में लिखा। जहाँ तक इस प्रकार के साहित्य का प्रश्न है, फारसी के सामने अरबी साहित्य का कोई स्थान नहीं। ईसा की 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक यह रहस्यवादी प्रवृत्ति फारसी कविता को अनुप्राणित करती रही है। वर्तमान काल में उर्दू साहित्य में इसी का बोलबाला है। मलाया के साहित्य में भी यह प्रभाव काम करता रहा है। वर्तमान अरबी साहित्य ने एक प्रकार से इसे त्याग ही दिया है। फारसी साहित्य इस दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। फारसी के 3 सूफी कवि फरीदुद्दीन अत्तार, जलालुद्दीन रूमी और शेख सादी के साथ सूफी साहित्य के स्वर्ण युग का प्रारंभ कहा जा सकता है। इन तीनों ने साहित्य तथा इस्लामी चिंतन धारा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और इनके बाद शबिस्त्री पृष्ठ संख्या 210, हाफिज और जामी के नाम आते हैं। अभी आगे चलकर हम प्रारंभिक काल के सूफी साधकों की कुछ विशेष भाव से चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की जीवनचर्या और वाणियों को लेकर सूफी मत के प्रादुर्भाव और विकास को समझाने की चेष्टा की जाती है। अतएव संक्षेप में हम उनके कार्यकलाप तथा कथनों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अन्य दार्शनिकों एवं सूफी कवियों के बारे में भी कुछ जान लेना आवश्यक होगा। उससे सूफी मत के प्रादुर्भाव, विकास तथा चरमोत्कर्ष को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इब्न अल फरीद, इब्न अरबी और रूमी सूफी सिद्धांत के प्रतिपादन अथवा कलात्मक कृति में चरम तक पहुंच गए थे। बहुत से संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए और उत्तरोत्तर उनकी संख्या भी बढ़ती गई। सूफियों का सम्मान नवाबों और बादशाहों के दरबार में बहुत बढ़ गया। बादशाहों और सुल्तानों ने सूफी मत को प्रश्रय भी दिया, लेकिन इन सारी बातों के होते हुए भी कालक्रम से सूफी मत की शक्ति क्षीण होती गई। इसके बहुत से अनुयायियों में अनाचार की वृद्धि होती गई और वह इसके पतन का कारण बनी। उच्च आदर्श, आध्यात्मिक प्रेम तथा श्रेष्ठ साधना का स्थान करामात दिखाने वालों और अत्यधिक आडंबर फैलाने वाले ढोंगियों ने ले लिया। जनता में उच्च सिद्धांतों के स्थान पर करामात, अंधविश्वास आदि का प्राधान्य हो गया। जो जितना अधिक ठग सकता था, लोगों को भरमा सकता था, वह उतना ही अधिक प्रसिद्धि लाभ कर रहा था। भिन्न भिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुसार इसका पतन धीमा या उग्र रहा। एक समय ऐसा आया कि धार्मिक कृत्यों तथा अन्य आचारों के अलावे नैतिकता का उनमें इतना ह्रास हुआ कि सूफी कहे जाने वाले व्यक्ति जनता की निगाह से एकदम गिर गए। किसी प्रकार के धार्मिक अथवा शासन के बंधन को मानना उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप शासकों पर भी उनकी वक्र दृष्टि पड़ी। सूफी कहे जाने वाले लोगों ने अज्ञान को ही महत्व देना शुरू किया। जादू टोना तंत्र मंत्र की ही प्रधानता उस समय हो गई। पृष्ठ संख्या 211। सन ईस्वी की 18वीं और 19वीं शताब्दी तक आते आते सूफी मत में केवल यही चीज रह गई, यह उसके भीतर की कमजोरी थी। बाहर भी समाज बदल रहा था, विज्ञान शिक्षा आदि की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, लोगों का दृष्टिकोण अब वैज्ञानिक हो चला। पहले जो कुछ सहज भाव से मान लिया जाता था उसे लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया। तर्क संगत बातें ही स्वीकार की जाने लगी। नए नए विचारों का प्रभाव सर्वत्र दिख पड़ने लगा। पुरानी मान्यताओं को छोड़कर लोगों ने नई मान्यताओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक जगत में नई हलचल पैदा हुई और पुराने आर्थिक संबंधों के प्रति लोगों में एक विद्रोह का भाव पैदा हुआ। इन सभी कारणों से समाज का पुराना ढांचा बदल रहा था। यह सबसे बड़ा कारण था कि लोगों ने सूफियों की बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। लोगों में इसके प्रति केवल उदासीनता का ही भाव नहीं था, बल्कि लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध भी करना शुरू किया। इस प्रकार से सूफी मत की शक्ति का ह्रास हुआ और आज की दुनिया में उसकी शक्ति नगण्य जैसी है।